आइए आज सुनते हैं अनुदित कहानियों की श्रृंखला में रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कहानी भिखारिन का हिंदी अनुवाद स्वर स्वाति तिवारी का। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सरदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं, उसका यह अनुमान असत्य भी नहीं था। आने जाने वाले दो चार पैसे उसके हाथ पर रख ही देते, अंधी उनको दुआएं देती, उनकी सरदयता को सराहती, स्त्रियां भी उसे उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज कपड़ा या पैसा डाल जाया करती। प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती, उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पद ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी, रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या सफ़ेद वस्त्रों वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां ज़्यादा दिया करते थे, तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते इस प्रकार दो चार पैसे उसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती, बच्चा कौन है, बच्चा किसका है, बच्चा कहाँ से आया, इस बात से कोई भी परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा, वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है और कहां से लाई। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और खुश और प्रसन्न रहता, खूब खेलता, उसको वह अपने से अच्छा खिलाती, अच्छा पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी, संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उस हांडी में डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांक कर रख देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए तो उसे काफ़ी अन्न मिल ही जाता था और उसका काम उससे चल जाता था। पहले वह बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिला कर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसीदास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा हैं, धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते, कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा कर जाते हैं। अंधी को भी यह बात पता थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई को यहाँ जमा क्यों नहीं करवा पा रही थी, या वह अपनी जमा पूंजी यहाँ देने में क्यों हिचकिचा रही थी। उसके पास काफ़ी रुपए हो गए, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका हुई कि कहीं कोई चोर न चुरा ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर आ खड़ी हुई। सेठ जी बही खाते के पृष्ट उलट रहे थे, उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया। अंधी ने हांडी उनके आगे कर दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर रख लो, यह सुरक्षित रहेगी। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर पूछा, क्या है इसमें। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे जोड़े हैं सेठ जी, अपने पास रखते डरती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ी तो बच्चे के काम आएंगे, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही खाते में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से नाम पूछा, ए बुढ़िया तेरा नाम क्या है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई फिर अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बीते। 2 वर्ष बहुत ही सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन बुढ़िया के बेटे को ज्वर आ गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक करवाई, टोने टोटके भी किए, परंतु सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हो रहे थे। लड़की की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। अंधी का अर्थ है अंदर ही अंदर टूट रहा था, उसका साहस जवाब दे रहा था। वह निराश और उदास थी, वह चिंतित थी। फिर उसे एक दिन अचानक ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से मेरे बेटे को फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती भागती हुई सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी अपने गादी पर विराजमान थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जब्बा पूंजी में से कुछ 10-5 रुपए मुझे दे दें तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास तो तुम्हारे कोई रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, सेठ जी 2 वर्ष हुए मैं आपके पास अपनी हांडी रख कर गई थी, मेरी धरोहर आपके पास रखी हुई है, कृपा करके दे दीजिए, आपकी बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए पूछा, मुनीम जी जरा देखना तो वही खाता, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? क्या है री तेरा नाम? अंधी की जान में जान आई, उसे आशा और विश्वास की एक लहर दिखाई दी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा सेठ बड़ा बेईमान है, किंतु अब वह सोचने लगी कि संभवतः सेठ के पास इतने लोग आते हैं, हो सकता है वह भूल गया हो मेरा नाम, ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी भला कभी झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने उलट पुलट कर बही खाता देखा और फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर तो एक पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठ गई, उसका रो रो कर बुरा हाल था। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, आप तो इतने धर्मात्मा हैं, दयालु हैं, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, इस समय मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं जीवन भर आपके गीत गाऊंगी, आपका गुणगान करूंगी, मेरे बेटे को बचा लो सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दो। परंतु क्या कभी पत्थर में कोई जोंक चिपकी है? सेठ जी ने क्रुद्ध होते हुए उत्तर दिया, ए जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेकती हुई खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा है सेठ जी, अच्छा अच्छा है, भगवान तुम्हें और दे, बहुत दे। और वह ऐसा कहते कहते अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह बुढ़िया का आशीष ना था बल्कि एक दुखियारी का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती चली गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों नहीं होता, यह सोचते हुए वह चिंता में डूब रही थी। एक दिन उसकी अवस्था इतनी चिंताजनक हो गई कि उसके प्राणों के भी लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी अब निराश थी। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आ रहा था, इतना धनी व्यक्ति मेरे ही रुपयों में से 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं कौन सा उससे दान या भीख मांग रही थी, मैं तो अपने ही रुपए मांगने गई थी। क्या सेठ ऐसे हो सकते हैं? धर्म के नाम पर क्या सेठ ऐसी बेईमानियां कर सकते हैं? उसे सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया, उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती हुई गुस्से में गिरती पड़ती सेठ के दरवाजे पर पहुंच गई। आज उसने सेठ के दरवाजे पर धरना ही दे दिया था। बच्चे का शरीर ज्वर से धधक रहा था और अंधी का कलेजा भी उसी तरह से धधक रहा था। एक नौकर किसी काम से बाहर आया, अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे घर से निकाल कर बाहर करो। नौकर ने अंधी के से जाकर चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से हिलने को तैयार नहीं थी। मारने का भय दिखाया गया, मारने का नाटक भी किया गया, पर वह टस से मस नहीं हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा, सेठ जी वह तो हिलती ही नहीं, वह तो टलती ही नहीं। सेठ जी स्वयं बाहर आए, उसे देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, अरे इसकी शक्ल सूरत तो मेरे मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। सेठ जी ने बहुत खोजा पर उसका कोई पता नहीं मिला था। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद से बच्चे को लिया और उसकी जांघ देखी। जांघ पर अब भी एक चिन्ह मौजूद था, लेकिन वह पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था। उनको विश्वास हो गया कि यह बच्चा अंधी का नहीं, उनका ही खोया हुआ मोहन है। परंतु उसको छीनकर उन्होंने अपने कलेजे से चिपटा तो लिया, लेकिन अंधी ने बच्चा फिर ले लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। उन्होंने नौकर को डांटते हुए भेजा कि जाओ डॉक्टर को लेकर आओ, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। वे अंधी और उसके बच्चे को अंदर लेकर आए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए सेठ, अब क्या मेरा बच्चा भी हजम करोगे, क्या मेरा बच्चा भी छीनोगे। सेठ बहुत चिंतित हुए और कहा, यह बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, आज मिला है, सो इसे अब कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी मैं इसे किसी न किसी तरह बचा लूंगा। अंधी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, वाह तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके उसे बचाओगे, और कल तक यह मेरा बच्चा था तो उसे मर जाने देते, क्यों सेठ यह भी कोई न्याय है। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैं उस अबोध अनाथ बच्चे को पाल रही थी, क्या मैं उसको अपने हाथ से ऐसे ही जाने दूंगी। सेठ की बड़ी अजीब मनोदशा थी, कुछ करते धरते नहीं बन रहा था और कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे वे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही और फिर अपने झोपड़े की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, दवाओं का असर हुआ और डॉक्टर की दवा ने जादू सा काम किया, मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो पहला शब्द माँ बोला। चहुं ओर अपरिचित शक्लें देखकर बच्चा फिर आंखें बंद करके रोने लगा। उस समय से उसका ज्वर फिर बढ़ने लगा। उसने एक ही रट लगा रखी थी, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, माँ को बुलाओ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चहुं ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों के बाद मिला तो मृत्यु से अपने चंगुल में दबाए जा रही है, कैसे बचाऊं इसे। ससा उनको अंधी का ध्यान आया, पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर ही ना बैठी हो। परंतु अब वह वहां कहाँ थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी की ओर चल दिए। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है, उसके नेत्रों से लगातार आंसू बह रहे थे। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया तो उसका शरीर भी अग्नि से तप रहा था। सेठ जी ने कहा, हे बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हैं, रह रहे कर वह तुझे पुकार रहा है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, तू मेरे साथ चल, चल अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूँ, हम दोनों ही स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे बनेंगे और इस तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं भोग पाए तो क्या हुआ, वहाँ मेरा बच्चा मेरा होगा और सुख से रहेगा, मैं वहाँ उसका सुचारू रूप से इलाज करवाऊंगी, सेवा शुश्रूषा करूंगी और अपने बच्चे के साथ सुख से रहूंगी। सेठ जी रो दिए, आज तक उन्होंने किसी के सामने ना सिर झुकाया था ना हाथ फैलाए थे, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े हुए और रो रो कर कहा, माँ ममता की लाज रख लो, तुम उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी के अंदर की ममता को पिघाल दिया और वह तुरंत उनके साथ चलने को तैयार हो गई। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और अपनी फिटन पर बिठाकर घर की ओर चल दिए। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारन दोनों की ही एक जैसी दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र वे बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन माँ का स्पर्श पहचान गया। उसने माँ के हाथ को पास आते ही आंखें खोल दी और कहा, माँ तुम आ गई, देखो मैं ठीक हो गया। अंधी भी कारण मोहन के सिरहाने बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में ले लिया। उसको बहुत सी सुख और शांति का अनुभव हुआ। वह उसकी गोद में आते ही सो गया और धीरे धीरे ठीक होने लगा। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशिंदे नहीं कर सके थे, जो वेद की पुड़ियाएं नहीं कर सकी थी, जो डॉक्टरों की दवाएं नहीं कर सकी थी, वह एक अंधी भिखारन माँ का स्नेह कर गया था। मोहन ने पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर माँ से कहा, माँ चलो। लेकिन अंधी ने मोहन से और सेठ जी से अपने लिए विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा सुना कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई और विवश होकर उन्हें उसे विदा देना पड़ी। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई एक थैली उसके हाथ में दी। अंधी ने पूछा, क्या है इसमें? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपये जो तुम मेरे पास जमा कर गई थी, मेरा वह अपराध क्षमा करो। अंधी ने बात काट कर कहा, अरे सेठ जी, यह रुपया तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठा किया था, अब यह उसी के काम आएगा, उसी को दे देना। अंधी ने थैली छोड़ दी और लाठी टेकती हुई वह अपने घर की ओर चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, किंतु इस समय एक भिखारिन होते हुए भी वह सेठ से बहुत महान थी। वह सेठ से ज़्यादा दयालु थी और सेठ से ज़्यादा धर्मात्मा भी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। जीवन का दान देकर वह चली गई। धन्यवाद।